ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरौ च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवता सेवया भगवतीयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 45 ततो अग्नि मारुतो राजन अमुच्चन मुखतो रुषा महीम निर्वृधुम कर्तु समर्तक इवत्याये। ततो अग्नि मारुतो राजन अमुच्चन मुक्तो रुषो। ततो अग्नि मारुतो राजन अमुच्चन मुक्तो रुषा मह्यं निर्वृधं कर्तु संवर्तक अत्यये। ततो अग्नि मारुतो राजन अमुच्चन मुखतो रुषो मह्यं निर्वृधं कर्तु संवर्तक अत्यये। ततो अग्नि मारुतो राजन अमुच्चन मुखतो रुषा मह्यं निर्वृधं कर्तु संवर्तक वत्तये। ततो अग्नि मारुतो राजन अमुच्चन मुखतो रुषा मह्यं निर्वृधं कर्तु संवर्तक व्यत्तये। ततो अग्नि मारुतो राजन राजन ऋषा नियम निर्विध रुषं कर्तुं संवर्तकित्यते। ततो अग्नि मारुतो राजन अमुच्चन मुखतो रुषा महीं निर्वृधं कर्तुं संवर्तक व्यत्ते। ततो अग्नि मारुतो राजन मुखतो रुषा मह्यं निर्वृधं कर्तुं संवर्तक व्यत्ते। शब्दार्थ एवं वाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की तत्पश्चात अग्नि आग मारुतो तथा वायु राजन हे राजन अमुच्चन निकलते हुए मुखता अपने मुखों से रुषा क्रोध से मह्यम पृथ्वी को निर्वृधम वृक्ष रहित कर्तुम करने के लिए संवर्तक परले अग्नि इव सदृश अत्य परले के समय अनुवाद। हे राजन, बोलिए, परले के समय शिव जी क्रोध में आकर अपने मुख से अग्नि तथा वायु छोड़ते हैं। प्रचेताओं ने भी पृथ्वी तल को पूर्णतः विक्षरित करने के लिए अपने मुखों से अग्नि तथा वायु निकाली। अब मैं पढ़ता हूँ। हे राजन, परले के समय शिव जी क्रोध में आकर अपने मुख से अग्नि तथा वायु छोड़ते हैं। प्रचेताओं ने भी पृथ्वी तल को पूर्णतः वृक्ष रहित करने के लिए अपने मुखों से अग्नि तथा वायु निकाली। तात्पर्य, इस श्लोक में विदुर को राजन कहकर संबोधित किया गया है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, धीर कभी कुपित नहीं होता क्योंकि वह सदा भक्ति में स्थित रहता है। चूंकि महान भक्त अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, अतः भक्त को राजन कहकर संबोधित किया जा सकता है। राजा प्रजा को वश में करके कई प्रकार से अपना शासन चलाता है। इस प्रकार जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके वह अपनी इंद्रियों का राजा है, वह स्वामी या गोस्वामी हैं। स्वामियों तथा गोस्वामियों को कभी कभी महाराज कहकर संबोधित किया जाता है। ओम अज्ञानम तिम्रांधस्य ज्ञानंजना शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वात्मानं। वंदेहं गुरुः श्रीचित्कमलां श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं सागरजातं सहगणारघुनाथावतं तं सिजिं साध्वीतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीशाखां। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी दिशभानुसुते देवी प्रणमामि। वांछाकल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभ्यो च नमां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चतदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का कृष्ण बलराम मंदिर की ओर से भागवतम की प्रातःकालीन कक्षा में स्वागत है। कभी कभी बड़ी विचित्र स्थिति होती है, आप सबके साथ भी घटना हुई हुई होगी, जो आपके अंदर अपने आप स्वयं में कमी होती है और कभी कभी उसी श्लोक को बोलने के लिए वो मिल जाता है। अभी श्लोक क्रोध के ऊपर है और मैं क्रोध का भंडार हूँ। अक्सर आता है पर क्या करें, कहीं मैंने सुना था कि बोलते बोलते भी कभी कभी कमियाँ दूर हो ही जाती है, इसलिए श्लोक में थोड़ा बोलने का प्रयास करेंगे। कृपया धैर्यपूर्वक सुनना, क्रोध मत करना। अनुवाद है, हे राजन, परले के समय शिवजी क्रोध में आकर अपने मुख से अग्नि तथा वायु छोड़ते हैं। भागवतम महात्म्य में आया है, उद्धव जी बताते हैं परीक्षित को कि भागवत परंपरा कहाँ से आई है। जब कृष्ण ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, पालन करने के लिए और सहार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया, तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कृष्ण के सामने, भगवान के सामने, कि आप तो शयन करने वाले हैं और आपने मुझे सृष्टि का भार सौंप दिया है उत्पन्न करने, और ये रजोगुणी कार्य है, इस रजोगुणी कार्य को करते हुए मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा। ये बृहस्पति जी बता रहे हैं संवाद, बृहस्पति जी ने उद्धव जी को संवाद बताया था। तो बृहस्पति जी कहते हैं भगवान ने उनको कहा कि आप भागवतम का श्रवण कीजिए, तो उन्होंने भागवत का ब्रह्मा जी को उपदेश दिया और उसी भागवत को 7 दिन तक सप्ताह परायण करके उन्होंने सृष्टि का पालन करना, उत्पन्न करना शुरू किया, जिससे उनका चिंतन सृष्टि में लगा, भगवान में लगा रहा। इसी प्रकार विष्णु जी बोले कि इस सृष्टि को पालने का कार्य मैं किस प्रकार कर पाऊंगा, मैं जो कर्म करता है, यज्ञ करता है, उसके उसको फल का अधिकार दे सकता हूँ, जो भोगना चाहता है उसको यज्ञ करके फल भोग सकता है, जो मुक्ति चाहता है उनको मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ, परंतु जो मुक्ति भी नहीं चाहता, उन लोगों का पालन कार्य मैं कैसे करूँ। तब भगवान ने उन्हें भागवतम का उपदेश दिया और उन्होंने उस भागवतम को एक महीने तक सुनाकर लक्ष्मी जी को उसका पारायण किया, और लक्ष्मी जी वही भागवत 2 महीने तक उनको सुनाती हैं विष्णु जी को। इसी प्रकार जब शिव जी की बारी है तो शिव जी कह रहे मैं सहार कार्य नहीं कर सकता, तमोगुणी कार्य है ये, मैं नीति नित्य और प्राकृत ये सहार तो कर सकता हूँ, अत्यंतिक प्रलय मेरे बस की नहीं। तब नारायण ने उनको भागवतम का उपदेश दिया, वही भागवत उन्होंने एक वर्ष तक कर्म से पारायण करते हैं, उसके बाद उन्होंने वो तामसी शक्ति को ऊपर विजय प्राप्त की और फिर वो सहार कार्य किया। अर्थात मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हम साधक भी नहीं हैं और साधक बने भी नहीं हैं, हम तो नहीं, मैं कह सकता हूँ अपने आप को, और अपने आप को हम क्रोध कर बैठते हैं और अपने आप को और क्षीण कर लेते हैं कृष्ण नाम लेने से, भक्ति करने से, साधन करने से, और प्रचेताओं ने भी पृथ्वी तल को पूर्णतः वृक्ष सहित आगे करने के लिए अपने मुखों से अग्नि तथा वायु निकाली। अब कोई प्रश्न हो सकता है कि प्रचेताओं ने अपने मुख से अग्नि तथा वायु निकाल के वृक्षों को नष्ट क्यों किया। इसके पूर्व प्रसंग में हमने पढ़ा कल वाले श्लोक के तात्पर्य में, क्योंकि प्रचेता अब राजा प्रचीन भर्षित इनको अपना राजगद्दी सौंप गए थे, अब वृक्षों के कारण सारी धरती आच्छादित हो चुकी थी, उस धरती आच्छादित होने के कारण अब धान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, फसल की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, प्रजा का पालन करने में बाधा थी, इसलिए उन्होंने वृक्षों को अगर अग्नि से जलाया भी है तो उससे कोई उनका अपराध नहीं बनता। परंतु इसके तात्पर्य की टीका में श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, बड़ी इस श्लोक के विपरीत बात लिखते हैं, किसके बारे में कहते हैं, राजन विदुर जी को कह के संबोधित किया गया है, क्योंकि मैत्री और विदुर का यह प्रसंग चल रहा है, और विदुर जी को यह कह के संबोधित करते हैं कि राजन मतलब विष्णु चक्र ठाकुर जी, क्रोध को त्याग कर ही भक्ति में स्थित हुआ जा सकता है, क्रोध को त्याग कर ही भक्ति में स्थित हुआ जा सकता है, और आप भक्तों में श्रेष्ठ हैं। क्रोध जब दुर्योधन ने उनको अपमान किया सभा में कि ये दासी का पुत्र है, ये हमारी थाली में खाता है, हमारी थाली में छेद करता है, ये कृष्ण के पक्ष में बोलता है, पांडवों के पक्ष में बोलता है, इसको बाहर निकालो, तो विदुर जी ने बिना कोई विरोध किए अपना मुकुट और धनुष रखा और सब कुछ अपना छोड़कर वहाँ पर चले गए, कोई क्रोध व्यक्त नहीं किया। अब देखिए कितनी विपरीत बात है, पर विदुर जी को कह रहे हैं कि राजन श्रेष्ठ कर कर कि जो भक्ति में श्रेष्ठ है वो क्रोध त्याग कर ही सकता है, क्या प्रचेतागण भक्त नहीं थे, जिन्होंने शंकर जी का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, तो क्या प्रचेतागण भक्त नहीं थे। पर उससे पहले मैं एक बात थोड़ी सी और करना चाहूँगा कि कितने ही प्रसंग भागवतम में हैं भक्तों के क्रोध के, भगवान के क्रोध के, कितने ही प्रसंग है। दुर्वासा मुनि तो हमारे फेमस हैं, और एक आपने प्रसंग सुना होगा भृगुनंदन का, भृगु जी का, जब वो भगवान कितने वक्त वत्सल है या भगवत्ता क्या है उसका जब वो टेस्ट करने के लिए गए, आपको सबको मालूम है कथा, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, और जब विष्णु जी के पास पहुंचे क्या बोले, विष्णु जी को जाते सीधे छाती में लात जमाई, मतलब लात जमाई। गलती किसकी थी, गलती किसकी थी, भृगु जी की, और माफ़ी कौन मांगते हैं, विष्णु जी मांगते हैं। आपके चरण कमलों में चोट लगी होगी, आपको मैं सराह देता हूँ, अगर आप मुझे पहले सूचित करते तो मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता, लेकिन उल्टा बिल्कुल विपरीत। और यहाँ बोलते हैं अपना इसमें तीसरे स्कंद में 16वें अध्याय में 24वें श्लोक में 23वें में कुमार कह रहे हैं भगवान को, आप जो विपरीत भाव करते भी हैं, आप जो विनीत होते भी हैं, आप जो विनीत होते भी हैं, नम्र होते भी हैं, हालांकि आप सर्व समर्थ हैं, आपको विनीत होने की जरूरत भी नहीं, आप पर होते भी हैं, तो आप अपने भक्तवत्सलता को अपने आप अपने यशों को अपने यश को बढ़ाते ही, उससे को विपरीत फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी कभी कभी, चाहे हम वरिष्ठ हों कुछ भी हों, कभी कभी भक्तों से पूछ लेना चाहिए, अगर कोई भक्त एक दूसरे व्यक्ति पर क्रोध हो रहा है कि प्रभु जी मुझसे क्या गलती हुई जिस कारण आपका व्यवहार मेरे प्रति ऐसा रहा, क्या फर्क पड़ता है उससे। भी नीचे गिरने में तो कोई हानि नहीं है ना, नीचे गिरने में कभी कोई हानि है ही नहीं। और गौड़िये का तो, गौड़ियों का भक्ति का तो एक सिद्धांत है विनम्र। महाप्रभु लिखते हैं तिरनादपि सुनिचेन तरोर विजा सहसुना। हमारे पश्चिम, हमारे तो नहीं कह सकता, हमारे पानीपत से निकल पड़ता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में शामली मुजफ्फरनगर साइड में, वहाँ लोगों को जब शादी का कार्ड दिया जाता है और लोग नहीं आए थे उनकी शादी में, तो जो कार्ड देने वाला मिठाई का डब्बा दे के जाता है शादी खत्म होने के बाद, और पूछता है कि प्रभु आप क्यों नहीं आए महाराज, कोई हमसे नाराजगी है, हकीकत बात है। और हमारे यहाँ लकी उल्टा है, कार्ड देने के बाद अगर नहीं आएगा तो उससे बोलना ही खत्म है, बोलना ही खत्म है जी, मतलब ही नहीं हमारे नहीं आया तो हम नहीं जाने, उसे पूछता भी तकलीफ क्या हुई आपको। तो बट मैं इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर रहा कि छोटे जाके पहले क्रोध करे और फिर वो वेट करे कमरे बैठ के बड़ा कब से हमसे माफी मांगने आए, नहीं। मेरा कहना कभी कभी, अभी देखेंगे आप इसके, हम अभी दृष्टांत में जो श्लोक लेंगे आप स्वयं देखेंगे भगवान की क्या कार्यकलाप है। एक बार वृंदावन चंद्रपुर में कहा था विचित्र कार्य, विचित्र कर्म पढ़ाया था पीछे, भगवान के कर्म ही विचित्र हैं। अपराध कोई कर रहा है माफ़ी कोई मांग रहा है, कभी कहीं कहते हैं कोई अपराध करे कोई माफ़ी मांगे, अब खुद ही माफ़ी मांगने चल देते हैं। तो इस प्रसंग में हम देखते हैं कि प्रचेताओं ने क्रोध किया। एक्चुअली प्रचेताओं का क्रोध का एक कारण तो यह था कि वृक्षों ने सारी धरती को आच्छादित किया हुआ था और धान को, फसलों को उत्पादन करने से रोका हुआ था, ये प्रत्यक्ष कारण दिखाई देता है, परंतु इसके पीछे एक अप्रत्यक्ष कारण भी है। भगवान अपना या अपने भक्तों के वचन को सिद्ध करने के लिए किसी के भी हृदय में प्रेरणा देकर कुछ भी संभव करवा सकते हैं। भगवान ने इनको वरदान दिया था, इसके 13वें श्लोक में आप आएंगे चलेंगे, तो क्या वरदान दिया था कि आपको वृक्ष एक पुत्री दे, कन्या देंगे, उससे आपको, वो कंडू ऋषि की होगी, उससे आपको विवाह करना होगा। तो भगवान ने प्रचेताओं के हृदय में प्रेरणा डाली क्रोध करने के लिए, उन्होंने वृक्ष को जलाया तो वृक्षों ने उनको कन्या लाकर दी। अगर वो वृक्षों पर क्रोध नहीं करते तो कन्या कहाँ से देते, कहते हैं ना बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। भैया राम जी जब समुद्र से रास्ता मांगा, भैया दे दे हमें पुल बनाना है, हमें लंका पे जाना है, सुनाई नहीं दिया उसको, कहाँ दिया सुनाई। पर जब राम जी ने कहा ठीक है अभी समझाता हूँ तुम्हारे को, जब धनुष का रथ सुखाता सुखाने के लिए, तब समुद्र देवता मूर्तिमान रो पर होकर खड़े हो गए, बताइए मेरे लिए क्या आ गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है प्रचेतन अगर क्रोध किया। हम सभी क्या, मैं तो माया का इंस्ट्रूमेंट, और ये सब जितने भी पार्षदगण हैं, भक्तगण हैं, भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण हैं, भगवान उनके अपने औजारों की तरह इस्तेमाल करते हैं, हथियारों की तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, आप सब लोगों को पता है, तीसरे अध्याय का 16वें, उसमें जय विजय का और सनक सनंदन का। सब लोगों को इसमें मालूम है कि जब चारों मुनि वैकुंठ द्वार पे पहुँचे, छठे दरवाजे पार करके सातवें, और जय विजय किसके स्वरूप में थे? भगवान के स्वरूप में थे। चारों भुजाएँ थी, नीला मुख था, गले में माला थी। और उसके बाद जब उनके दरवाजे रोकने पर, तो उन्होंने, मुनियों ने उनको क्रोध कर श्राप दे दिया। और मुनियों ने जब उनको क्रोध कर श्राप दिया तो वो उनके चरणों में गिर पड़े। अब चरणों में गिर पड़े, अब इतने में भगवान को वहाँ बैठे थे अंदर, उनको पता लग गया कि ये वार्तालाप हुआ है उनका, अभिशाप की अभिशाप हो गया। तो भगवान स्वयं चलकर वैकुंठ धाम के बाहर दरवाजे पर आए और वो क्या बोलते हैं सनक संदर्भ को जरा ध्यान से सुनेंगे। 8-10 तात्पर्य पढ़ेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर, उससे कुछ और थोड़ा सा व्याख्या निकलेगी। भगवान बोलते हैं श्राप देने के बाद मुनियों को, जय विजय नामक मेरे इन परचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। हे मुनियों, आप लोगों ने जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ और इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब बताइए, अम्बरीश महाराज के केस में और दुर्वासा के केस में क्या था? दुर्वासा जी जब गए भगवान के पास कि मुझे माफ़ कर दो, इस सुदर्शन से बचाओ, तो क्या बोले? कहते मेरे भक्त का किया गया अपराध है, मेरा भक्त ही माफ़ करेगा, तभी वो माफ़ करेगा तभी इस दुर्शन चक्र हट सकता है। परंतु यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? जय विजय ने तो माफ़ी मांगी, परंतु जय विजय की जगह माफ़ी कौन मांग रहे हैं? भगवान मांग रहे हैं। जय विजय की जगह माफ़ी कौन मांग रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं उनकी ओर से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरे सेवक हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ निकली, मेरे को लगी थोड़ी सी अनुभव हुई, अगर मैं गलती तो मुझे क्षमा करना। आगे अनुवाद पढ़ेंगे और क्लियर होगी। अब जय विजय भगवान के पार्षद हैं और चारों कुमार भगवान के भक्त हैं। भगवान कह रहे हैं आगे चल के, मेरे जय विजय को तो अपना पर्सनल घोषित कर रहे हैं, और कुमारों को अवज्ञा नहीं है, कुमारों को भी आगे सम्मान कर रहे हैं, पर कुमार उनसे डिफरेंस है। जैसे कहते हैं, एक कहता है मेरा बेटा और मेरे जैसा बेटा, मेरे बेटे जैसा, समझ गए ना आप? मेरा बेटा और मेरे बेटे जैसा, तो उसमें फर्क हो गया ना? हो गया। भगवान क्या करे, मेरे पार्षद ने जो अपमान किया है और उसके लिए चाहे मुझे अपनी भुजा भी काट कर देनी पड़े तो मैं तुम्हें दूंगा। किसको बोला? चारों कुमारों को। तो प्रिय कौन हुए? पार्षद प्रिय हुए ना। चारों कुमार तो किस लिए प्रिय थे? क्योंकि भगवान को आगे श्लोकों में आता है लास्ट वाले में अनुवाद में कि भगवान को अपना सर्व दयामय अनुग्रह दिखाना था, तब करके उन्होंने ब्राह्मणों का वहां पर गुणगान गाया। जैसे भगवान कहते हैं गोपियां मेरे स्वरूप हैं, जय विजय भगवान के स्वरूप थे, उनके स्वरूप में खड़े थे, वो उन्हीं के स्वरूप में खड़े थे। उसके बाद चारों कुमारों ने उनको श्राप दिया। आगे श्लोकों में आता भी पढ़ेंगे हम, क्या वो माफी मांगते हैं जय विजय चारों कुमार? आगे श्लोक में पढ़ते हैं अभी तात्पर्य। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सम्मानित होकर लोग स्वामी को दोष देते हैं, जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर सफेद कोड़ के कुष्ठ के धब्बे सारी चमड़ी को दूषित बनाते हैं। सारे संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक चंडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर खाता है वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है जो मेरे नाम और यश का कीर्तन करता है। अब आप लोगों को निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार हो चुका है, अतएव मैं अपनी भुजा काटकर अलग करने में जरा भी संकोच नहीं करूँगा। यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे, बता आचरण प्रतिकूल लगा तभी तो उन्होंने श्राप दिया। इसका मतलब भगवान नहीं मान रहे ना कि इनका आचरण प्रतिकूल है। अनुवाद समझे, यदि इसका आचरण, किसका आचरण, जय विजय का आचरण प्रतिकूल है तो मैं भुजाएं काटने में भी संकोच नहीं करूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो भगवान के अंदर भी है कि इनका आचरण प्रतिकूल नहीं है। आगे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इसके 14वें श्लोक में, 24वें श्लोक में, कि भक्त अगर भगवान की सेवा के लिए खड़ा है, उसका अपराध किसी भी कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा से और भगवान के लिए खड़ा है, अपने हित के लिए नहीं खड़ा है। और उसकी आज्ञा को मानना चाहिए, उसकी अवज्ञा करनी ही नहीं चाहिए। हम कभी फेस्टिवलों के टाइम में होता है, मैं भी खुद इसके अंदर शामिल हूँ, कभी भक्त लोग गेट पर होते हैं, इस पर नहीं जाना, उस पर नहीं जाना, उनको अवज्ञा करके, उनको इग्नोर करके हम निकल जाते हैं और उनमें लगते हैं कि तो ऐसे रोकने लगाते हैं मैनेजमेंट वाले सब कुछ ऐसे। तो कहते हैं भगवान, कहते हैं मेरी आज्ञा से और मेरे लिए वो खड़ा है। भी एक चीज बताओ, चारों कुमार आए, पहला क्या बनता है? फर्स्ट तो कोई व्यक्ति आएगा तो अपना परिचय देगा ना, मैं सो एंड सो हूँ, आप जरा कृपा करके, आजकल तो कार्ड पकड़ाते हैं, आप कृपा करके कहिए कि मेरे को उनसे मिलना है, आपको मिलने की आज्ञा दिलवा दीजिए आप, ये थोड़ी क्या हटो जरा पीछे, हमें अंदर जाना है। आजकल गुरु महाराज के जब सेक्रेटरी से मिलते हैं, अगर उनको इग्नोर करके जाएं, वो तो रूम में बैठे वेट कर रहे हैं, इसलिए तो होते हैं कि उनसे टाइम मिले या मिले तभी तो जाएं। सीधा महाराज, गुरु महाराज का दरवाजा खुला, सीधा जाकर अंदर डंडवत, कोई किस अवस्था में क्या कर रहा है क्या नहीं, तो उसको सोचना पड़ेगा ना। अरे गुरु महाराज से हमारे डायरेक्ट संबंध है, कोई जरूरत नहीं सेक्रेटरी वैक्ट्री की, ऐसे जाके मिलेंगे, क्या दिक्कत है। हमारे के अंदर जो दास, हम कहते हैं दास 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 दास, अनुठा आठवें स्तर पर गिनते हैं ना, हम गुरु महाराज के या ठाकुर जी के दास बनते हैं, पर भक्तों के दास हम कभी स्वीकार ही नहीं करते। जो गुरु महाराज का नियर क्लोज सेक्रेटरी दास है ना फिलहाल, तो हम उसके दास बने ना, गुरु महाराज को प्रसाद के लिए पूछेंगे, उनके लिए उनको कोई नहीं पूछता उनको, जबकि पहले उनको पूछना चाहिए। हमारी परंपरा ये कि हम दास के दास के दास के दास हैं। परंत क्या होती है, हमारी अप्रोच कहाँ होती है, सीधी होती है। अरे वो जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूं, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं, और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे नहीं छोड़ती, यद्यपि इसके लक्ष्मी के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है, और अन्य लोग इसके सौंदर्य की प्रशंसा करते, इसकी रच मात्र कृपा पराने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। अब देखिए, यज्ञ अग्नि में जो मेरे ही निजे मुख में से एक हैं, यज्ञ कर्ता अगर डाली गई आहुतियों में मुझे इतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो ब्राह्मणों के मुख से अर्पित किया जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं, जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। यज्ञ की अग्नियों से नहीं, जो ब्राह्मण को, अब देखिए कितनी विचित्र बात है, भगवान ब्राह्मणों की महिमा खूब गा रहे हैं, ब्राह्मणों की महिमा खूब गा रहे हैं। दसवें स्कंद में आप लोगों ने देखा, नारद जी जब कृष्ण के महल में आए, सुदामा जी है, उनको आसन दिया, जलपान दिया, उनके चरण को, चरणों का जल धोए, चरण धोए, चरणों का जल अपने और अपने परिवारों के ऊपर छिड़का, ठीक। और यहाँ क्या कर रहे हैं विष्णु जी, उनको सब उपदेश गेट पर ही दे रहे हैं, सब उपदेश गेट पे दे रहे हैं, ब्राह्मणों की महिमा खूब गा रहे हैं, उपदेश भी गेट पे दे रहे हैं। भाई अंदर नहीं बुलाया, जलपान नहीं कराया, क्यों? वो तो आप अंतिम ही पढ़ेंगे तो भगवान को धाम से बाहर गुड बाय हेलो कह के अपना टाटा, अंदर नहीं, क्योंकि हालांकि चलो ठीक है, सब प्रसंगवश है, चाहे भगवान की लीला है, उनको मतलब कि क्रोध का वो मतलब लीला करनी थी युद्ध की, परंतु भगवान भी इस चीज से अंतर ही अंतर खिन्न है, आप आगे के श्लोक में पढ़ेंगे।
इसलिए भगवान उन्होंने बाहर से बाय बाय ब्राह्मणों को खूब गुण गाए। भाई भगवान कह रहे हैं कि जब वो कहुतियों से उतना खुश नहीं होता, उनको घी से सिक्त व्यंजनों से ब्राह्मणों से मैं खिलाकर सिक्त संतुष्ट होता, तो भगवान खिलाते हैं उनको अंदर बैठ के। भाई खाली शब्दों में महिमा गानी जा रही है। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो किसी एक व्यक्ति का जो बहुत शुद्ध वैष्णव, उसका सेक्रेटरी से किसी के नीचे लड़ाई हो गई, किससे, जो आने वाले हैं वो भी वैष्णव हैं, जो आने वाले हैं वो भी वैष्णव हैं, और वो कोई सिद्ध व्यक्ति है, वैष्णव है, और वो नीचे खड़ा उसकी ड्यूटी पे, कोई भक्त खड़ा है ड्यूटी पे। अब जिसकी ड्यूटी पे खड़ा है और वो ड्यूटी वाला आ जाए, उनके बर्ताव को सुनेगा, वो क्या करेगा? वो ये तो कहेगा नहीं भाई, हाँ भाई मेरे सेवक ठीक बोल रहे हैं। क्या बोलेगा? भाई बिल्कुल गलत है जी, आपने जो करा बिल्कुल ठीक किया, आप बताइए क्या दंड है इनके लिए? इनका दंड का जिम्मेवार मैं हूं, क्योंकि इनका सेव, इनका स्वामी मैं हूं। हालांकि वो तो जानता है ना कि इसको मैंने ही खड़ा किया था, भी मैं ये कार्य कर रहा हूं पर्टिकुलर, नहीं आया अंदर, तो इसका मतलब क्या है? अब फिर ठीक है, अब उसी गेट पे खड़े खड़े उनके खूब गुणगान गा रहा है, अजी आप तो ऐसे हो, अब ऐसे हो आप, ऐसे हो आप, आपकी ये महिमा है, आपका ये गुण, वो ठीक है अंदर अंदर कहेगा चाय पानी तो पूछ ले भैया। भाई गेट पे सब कुछ, गेट पे आरती, मान लो आप गेट पे किसी की आरती उतार दो खड़े खड़े उसकी, और आरती उठा कर ठीक है प्रभु जी हरे कृष्ण, भाई कोई अंदर बिठाया नहीं, कुछ कराया नहीं, तो क्या है इसमें, क्या समझे? पर वो बोल भी नहीं सकता उसके सामने, क्योंकि पता है सामने खड़ा कौन है, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकता, उसे पता है कि सामने खड़ा कौन है, सामने साक्षात विष्णु खड़े थे, वो कैसे अपने भाव को प्रकट करे? देखो आगे श्लोक में आ जाता है, श्लोक लंबे हो जाएगा। देखो फिर बोलते हैं ब्रह्मा जी, बोलते हैं भगवान की इस उत्कृष्ट वाणी को, किस उत्कृष्ट वाणी को, जो भगवान ने अभी उस सनक कुमारों को बोली, गहन आशय तथा उसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझे जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना, उसका मनन भी किया, किंतु वह यह सुनकर समझ नहीं पाया कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, कि भगवान हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान हमारी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, या भगवान हमारे पर क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। इसमें आगे श्लोक में है फिर, यहां आगे इस कुमार बोलते हैं, देखो हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहें, हम बिना द्वेत के स्वीकार करेंगे, हम जानते कि हमने दो निर्दोष व्यक्ति को श्राप दिया है। अब समझ गए भाई, देखो हरेक आदमी को अंतरात्मा से पता होता है कि गलती पे कौन है, चाहे वो बाहर से कुछ भी करते हैं, प्रभु जी मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। अब चारों कुमार समझ गए कि भगवान ने हमारी तारीफ तो खुद भी खूब कर दी ब्राह्मणों की, परंतु पानी का गिलास भी नहीं पूछा, और ये भी नहीं कहा अंदर तो आ जाओ। अंतिम श्लोक में आता है, पर अनुवाद में आता है कि भगवान अपना सर्व दयामय ब्राह्मणों के प्रति अनुग्रह दिखाना चाहते थे, जो कि है वास्तव में, इसलिए भगवान ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं अगले श्लोक जो हम पढ़ेंगे, कि भगवान प्रसन्न थे या अप्रसन्न थे, किस मुद्रा में उन्होंने कहा, ये भगवान स्वयं जानते थे। और इनसे दिखाई देता है कि भगवान प्रसन्न नहीं थे, जैसे कि इस चैप्टर से जस्ट पहले जब उन्होंने श्राप दिया तो भगवान चलकर आए, तो उन्होंने भगवान की स्तुति की पांच श्लोक में स्तुति की भगवान की। और आपने भागवतमों के प्रसंग में देखा है, भगवान की स्तुति का जो करते हैं भक्त, तो भगवान उन स्तुतियों का जवाब देते हैं, स्तुति के हिसाब से रिप्लाई करते हैं ना, परंतु नहीं, भगवान ने सिद्धार्थ क्या कहा, मैं जानता हूं कि जय और विजय मेरे दोनों अनुचरों ने आपके खिलाफ गलती की है, स्तुति का कोई रिप्लाई नहीं दिया, भगवान ने आते ही टू द पॉइंट टॉक द पॉइंट शुरू किया, कोई स्तुति का रिप्लाई नहीं। मान लो कि हम किसी भक्त के प्रति गलती करें और उसके सीनियर से हम उसका सीनियर आगे माफ़ी मांगे और सीनियर की हम स्तुति करें क्योंकि हमारे श्रेष्ठ है, उस सीनियर उसकी स्तुति को अपने हमारे उसको इग्नोर करके कहेगा हाँ जी ठीक है जी आपने गलती की, उनको सजा दिया आपने, ठीक है। भगवान ने स्तुति का कोई रिप्लाई नहीं दिया, सीधा आगे जय विजय गलती मानी और अपने ब्राह्मणों का गुणगान का वर्णन किया। अब क्या बोलते हैं भगवान जब उन्होंने बोला क्या कि हम मानते हैं कि निर्दोष व्यक्तियों को हमने श्राप दिया है, आप हमें या जिनको जो भी दंड देना चाहे हमें स्वीकार है। तो भगवान ने कहा हे ब्राह्मणों ये जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा ही निश्चित किया गया था, अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता से मेरे विचार में मुझसे दृढ़तापूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्रतापूर्वक मेरे धाम को लौट आएंगे, मेरे धाम को मेरे पास लौट आएंगे। भगवान को जब देखा कि इन चारों कुमारों को विक्षेप हो गया, मतलब कि इनको अब समझ में आ गई है लीला क्या है, कहते नहीं नहीं इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। रूप गोस्वामी माधुरी कंदमणि में लिखते हैं इसी प्रसंग के ऊपर कि भगवान के मन में जब क्रोध का युद्ध की इच्छा प्रकट हुई करने की और जब उनको सनक कुमारों को इनको पता लगा तब उन्होंने कहा कि कोई भगवान से लड़ने में समर्थ नहीं है, हमें समर्थता हासिल है परंतु हमें प्रतिकूल भाव नहीं है, जब तक प्रतिकूल भाव क्रोध नहीं होगा तो हम युद्ध कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उस समय भी वो उसी चिंतन में थे जिस समय चारों कुमार उस दरवाजे पर आए, उस समय भी वो उसी चिंतन में थे। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सुरजनों का या असुरजनों का नास्तिक परिवार में जाने के लिए मुनियों द्वारा श्राप दिया गया था, कोई भक्त नास्तिक परिवार में जाए यह आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु है केवल दिखाया, सदम युद्ध समाप्त करने के लिए भक्त तथा भगवान दोनों पुनः आध्यात्मिक लोक में मिल जाते हैं। पीछे हिजोलनेस राधा गोविंद महाराज की क्लास थी, कोई भक्त पूछ रहा था प्रहलाद महाराज कैसे असुर परिवार में आए, तो प्रभुपाद जी तत्पर्य में लिखते हैं कोई आश्चर्यजनक नहीं है, भगवान की सब लीला पुनः आध्यात्मिक लोक में दोनों जाके मिल जाते हैं। मतलब बात सिर्फ यही है हर क्रोध का। अब देखिए इसी क्रोध को अर्जुन को अगर ठाकुर जी ने क्रोध नहीं दिलवाया होता तो द्रौपदी के जो वचन था उसकी रक्षा कैसे होती। द्रौपदी ने क्या कहा, इस दुशासन के जब तक खून से मैं अपने केशों को नहीं धोलूंगी तब तक के केशों को मैं नहीं बांधूंगी। भीम ने प्रतिज्ञा की जंगा तोड़ने की दुशासन दुर्योधन की, भाई अपने भक्तों की प्रतिज्ञा कैसे पूरी कराएंगे, अर्जुन ने तो हथियार डाल दिए, भाई मैं नहीं लड़ सकता अकेला, मेरे परिवार वाले खड़े हैं जी, आपके परिवार वाले थोड़े मेरी परिवार वाले हैं। भगवान ने कहा नहीं, भगवान ने अर्जुन के मन में प्रेरणा डाली और उनके मन में भगवान ने धीरे धीरे दिखा दिखा कि ये किया तुम्हारे साथ, ये किया तुम्हारे साथ, ये किया, क्रोध उत्पन्न करके उन सभी कौरव वंशों का वध कराया। और देखिए अपनी ही प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अर्जुन के माध्यम से युद्ध करवाकर, युद्ध तो बिना क्रोध के नहीं हो सकता ना, युद्ध तो बिना क्रोध के नहीं हो सकता। अब लोग कहने वाले कहते हैं भैया भगवान ने इतने 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 करोड़ लोग मरवा दिए, खाम के वाला चुपचाप खड़ा था, क्या मतलब था। परंतु जो ठाकुर जी को या भगवान को कार्य करना है उस कार्य के पीछे किसी का विक्षेप थोड़ी, कोई रोक थोड़ी सकता उस कार्य को। और अपने ही भक्त भीष्म पितामह का वध करवा दिया जो 12 महाजनों में से एक है। भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा तो ली थी ना कि या तो मैं आज अर्जुन का वध करूंगा या आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा के रहूंगा। भीष्म पितामह के प्रतिज्ञा की रक्षा करनी थी तो उन्होंने क्या किया, जिस भगवान ने यह कहा कि मैं युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा ली, तो जब देखा कि अर्जुन की मृत्यु नजदीक है तो भगवान ने स्वयं अपने हाथ में पहिया उठा लिया मारने के लिए, रथ का चक्र उठा लिया। तो भीष्म पितामह कहते हैं ये क्या कर रहे हो, आपने तो प्रतिज्ञा ली है। कहता है हथियार थोड़ी है, कहता है जो मारने के लिए उठाया जाता है वो हथियार ही है। कहते ठीक है ठाकुर जी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी बस, या तो आपकी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी अर्जुन का वध करना था, आप मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो, मुझे क्या जरूरत है, अब करो जो आपने काम करना। पर बात यह है कि भक्तों का जो क्रोध है वो भगवान की लीला में सहायक है, चाहे वो नारद जी ने नल कुबेर को दिया, चाहे अगस्त्य ऋषि मुनि ने इंद्रदुम्न महाराज को दिया, पार्वती जी ने चित्रकेतु को दिया, कितने ही ऐसे क्रोध के कितने ही वो हैं। परंतु जो मुझ बद जीव का मेरा जो क्रोध है वो कामना से पूर्ण है। भगवत गीता में बोलते हैं काम क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है, रजोगुण से। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समद बोला, रजोगुण कहाँ से उत्पन्न होता है, चौदह अध्याय के सातवें श्लोक में रजोराजगात्मक वृद्धि, रजोगुण काम से और तृष्णा से उत्पन्न होता है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक होते हैं कि काम और क्रोध का सूक्ष्म रूप है जो वो राग और द्वेष है। काम और क्रोध का जो सूक्ष्म रूप है वो राग और द्वेष है। यदि इस राग द्वेष पे हमने नियंत्रण नहीं पाया तो हमें इसी जीवन में दोबारा बार बार भटकना पड़ेगा। श्लोक का इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वयो ने भारत सर्वभूतानि सम्मो सर्गयान्ति परन्तपः। न जाने वो कब दिन आएगा जब भगवान भी हमें कहेंगे ये मेरे हैं। बड़ी ऊंची स्थिति है, हालांकि अभी हम साधक के स्तर पे भी नहीं पूरे हैं, भक्त के स्तर तो दूर की बात और मेरे कहें वो प्रेमी के स्तर की तो और दूर की बात है। ठीक है कभी कभी मैं समर्थन नहीं करता इस चीज़ का कि हमें क्रोध करना चाहिए, परंतु प्राकृतिक के स्वभाववश या हमने जिस स्वभाव को स्वभाव से हमने जिया है, संस्कार हमारे हैं या हमने पूर्व में भी जीवन जिया है, कभी कभी क्रोध आ जाता है तो हमें तुरंत उस वैष्णव से माफ़ी मांगनी चाहिए। माधुर कमदमनी में परसों पढ़ा कि वरिष्ठ भक्तों से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर अपराध का काफ़ी बड़ा अगर वो माफ़ ना कर पा रहा हो तो आर्त होकर कीर्तन करना चाहिए, निरंतर कीर्तन करना चाहिए। हो सकता है कि उससे आपको कुछ राहत मिल सके, परंतु ये नहीं इसको बात को पकड़ लें कि उससे माफ़ी मांगने ना जाएं और राहत होकर आर्त होकर कीर्तन करने लगे। नहीं, आर्त होकर कीर्तन तो हो ही नहीं सकेगा। जब अपराध दिल में बैठ जाता है, तो उस व्यक्ति से माला संभव ही नहीं, कि कीर्तन क्या माला ही नहीं हो सकती, उससे नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये मेरा अपना अनुभव है, हमें जितना हो उतना बचना चाहिए। उपदेश बहुत है इसके अंदर देने के लिए, परंतु मेरे लिए मुझे पढ़ने के लिए मैं यहाँ डिस्कस करूँ मेरी मूर्खता है। फिलोसफी बहुत है कि कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, इंद्रियस्य अर्थो रात राग दोष व्यवस्थित हो तय अवश्यम गच्छतो परि हस्य ही परिपंथनो। समझने के लिए बहुत श्लोक हैं, परंतु मेरे लिए हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दें और कि मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकूं। बस यही आप लोगों से प्रार्थना है। और इस श्लोक का सार यही है कि किसी भी भक्त में हम किसी तरह का दृष्टि कोई गलती दोष ढूंढे नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं साहब कि भगवान में सेवा में लगे रहना व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। यह कहा गया है कि जिसे भी भगवान की सेवा में अंतर्निहित श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो उसमें देवताओं के सारे सद्गुण होते हैं, तो फिर भक्त दोषी कैसे हो सकता है। और फिर वो अगर भक्त दोषी दिखाई भी दे रहा है तो वो श्लोक को स्मरण कर लेना चाहिए। कौन सा श्लोक है वो? सम्यक ही वस्तु सह वाला जो तेषां जनान पुनः कृत कि भगवान को हाँ अभी चेत सद दुरोचारो भस्ते मामन्य साधुरेव से मंतव्य सम्यक ही वस्तु से। अगर दिखाई भी दे तो ये समझना चाहिए, और फिर भी दिखाई दे तो फिलोसफी कर लेना कि दर्शन से समझ लेना चाहिए कि ये इसकी प्रकृति कार्य कर रही है। सीधी सी बात है, कोई जानबूझ के ऐसा कोई गलत का भक्त एटलीस्ट कम से कम नहीं करता कि जानबूझ के क्रोध नहीं करता, वो उसको कम से कम ये सोच के माफ़ कर दें कि उसकी ये प्रकृति है भैया, उसका ये नेचर है। पर अपने हृदय में राग द्वेष नहीं रखें, अरे यार इसने कर दिया तो उसका स्वभाव ही ऐसे, तो हर टाइम क्रोध करता रहता है। आपस में मनमुटाव नहीं रखें, ठीक है हो गया भैया, ठीक है उसने माफ़ी मांग ली, आपने माफ़ी अगर नहीं भी मांगी, अगर उसने माफ़ी नहीं भी मांगी अपने हृदय से, भाई भक्त का क्या लक्षण है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, यही लक्षण है ना। अपने हृदय से उसको वैष्णव अपराध की श्रेणी में मत लें कि उसने मेरा अपराध कर दिया, क्यों प्रभु गलत है या ठीक है, ताकि अगले का जीवन भक्ति की लाइफ है वो नुकसान में ना जाए। रूप गोस्वामी लिखते हैं चित्रकेतु ने पार्वती जी का जो अपराध किया तो उनको वैष्णव अपराध नहीं लिखा, क्योंकि अगर वैष्णव अपराध लगा होता तो जो उस चार श्लोकों में सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान की वो नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है भाई, वैष्णव अपराध करने से किसी पर क्रोध व्यक्त करने से हमारी भक्ति लाइफ ही नष्ट हो जाएगी, हम पूरे धरातल पे आ जाएंगे कहाँ पर जहाँ से चले थे। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है अगर कोई गलती से भक्त क्रोध कर भी दे तो उसके अपने हृदय से ना लगाएं, क्योंकि हृदय से लगाने से जो हृदय से लगाता है उसके मन में भी तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष पैदा हो जाएगा ना, क्यों प्रभु जी? भाई जो स्वयं हृदय से लगाएगा उसके प्रति तो सामने वाले व्यक्ति के द्वेष पैदा हो जाएगा, और उसका भी तो चित्त अशुद्ध हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहने भारता, उसको भी तो वापिस इसी धरती पे साथ में आना पड़ेगा ना। बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, समय पूरा हो चुका है, कथा को विश्राम देते। श्रीमद्भागवत महापुराण की शिला प्रभुपाद की पिता गौर प्रेमानंदे।